हरे हरे। विशेष स्वागत है हमारे बीच में है हमारा परम सौभाग्य परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज स्वागत करेंगे और साथ में जितने भी इस कॉल पे जयपाल से वरिष्ठ वैष्णव गण आए हैं आखिरी दिन का पूरा फायदा उठाइए ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। आज जो आप सुनेंगे कैसे कंस का वध होगा और सुंदर सुंदर मथुरा लीलाएं जो भगवान ने की वहां पर उनका श्रवण करेंगे महाराज के मुखारविंद से, तो ध्यान पूर्वक इन सब का श्रवण करें। आप सबसे प्रार्थना है मोबाइल फोन कृपा करके साइलेंट कर दीजिए ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे बीच में। और उसके बाद आपको जानकर और भी खुशी होगी कि जैसे शायद मैंने पहले भी बताया था कि आज जो है जिन भक्त ने पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था की इनको प्रेरणा मिली इस चीज के लिए दशरथी राम प्रभु, तो शायद आप जानते होंगे आज उनका जन्मदिन भी। हम बाद में आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप उन सबको उनको ब्लेस करें कि वो भक्ति में आगे बढ़े। और इसके साथ में विराम करता हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ प्रार्थना करता हूँ कि अपनी कथा जो है प्रारंभ करें। हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। तो आज इस कथा सत्र के अंतिम दिवस है, तो आप सभी उपस्थित भक्तगण आतागण को मैं इस्कन की तरफ से विशेष करके इस्कन पंजाब विभाग की तरफ से आपको स्वागत करता हूँ। और हमारे यहाँ के अधिदेव श्री राधे राधिका रमण कृष्ण बलराम निताय गौर सुंदर श्रील प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी उपस्थित भक्तगण को उनके पूरे आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरोन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नाम धृक् जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मी पते प्रभु जय नीलांबुज श्याम नीलजीमुत सन्निभ जय पद्माधरित्रिभ्याम निसेवित पदाम्बुजम जनार्दन जगत बंधु शरणागत पालक त्वं दास 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 दासानां दासत्वं देहि मे प्रभु दासत्वं देहि मे प्रभु। तो प्रतिदिन की भांति आपको सभी को अनुरोध है, आप उस रंगमंच पर पहुंच जाइए अभी, जहां अभी पूरे मथुरा जनपद के समस्त आवाल वृद्ध वनिता समूह सामूहिक ओर से महाराजाधिराज कंस से लेकर के छोटे बालक पर्यंत जो भी जनता आज रंग सभा के अंदर स्टेडियम के अंदर हैं, सभी का एक टक दोनों आंख लगे हुए हैं द्वार पर। किस पर लगे हुए हैं द्वार पर? राम श्याम दोनों प्रवेश कर रहे हैं, गजदंत कंधे पर लिए हुए, गजमद रक्त बिंदु से सुशोभित होते हुए अपने अलकों को पीछे रख करके वनमाला वक्ष स्थल पर चूल लहरा रहा है। पीत वसन नील वसन इस प्रकार अद्भुत मनोहारी शोभा के साथ दोनों भाई पीछे अपने गोप सखाओं के साथ अब प्रवेश कर रहे हैं। सभी उनको देख रहे हैं। काल में बताया था 10 प्रकार रसों में अलग अलग भाव में अलग अलग व्यक्ति उनका दर्शन कर रहे हैं। जिनको जैसा भाए इनको ऐसा ही दर्शन होता, वही रूप दिखता। तो कुछ समय तक तो स्तब्ध होकर सब देख नहीं रह गए, सब बंद हो गया। जो बाजा बज रहा था वो भी वाद्यकार का हाथ चलना बंद हो गया, क्योंकि सब सबका मन प्राण सब बुद्धि सब नेत्र में ही आ गया। अब सब नेत्र में ही है, अब कोई शरीर में कुछ है ही नहीं, केवल एक ही एक्टिव इंद्रिया रह गया, केवल क्या आंख, वही एक्टिव में है। वो देख लेना चाहते हैं। कल मैंने बताया था सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं कि वहां पे जो जनमानस थे वो तो इस प्रकार देख रहे थे आंख फाड़ करके कि केवल देखना नहीं चाहते थे, आंख से पी लेना चाहते थे, आंख से इस रूप शोभा को पीना चाहते थे और जिह्वा से उस रूप शोभा को चाट लेना चाहते थे, नासिका से उसे सूंघ लेना चाहते थे और बाहु से उनको आलिंगन में लेना चाहते थे। इस प्रकार अति आप कह सकते हैं आतुर होकर देख रहे थे उनको। तो राम श्याम भी देख रहे थे, वो किसको देखेंगे, वो तो अपने स्वजनों को देख रहे थे। पिताजी कहाँ हैं, बाकी हमारे गांव के लोग सब कहाँ हैं। बड़ी भीड़ था चारों तरफ, विशाल स्टेडियम था। देखते देखते और जहां पर ब्रजवासी लोग बैठे थे नंद गोपादि, वो लोग तो खड़े होकर मानो हाथ हिला रहे, इधर इधर आ जाओ आ जाओ इधर ही, बहुत देर से हाथ हिला रहे। लेकिन भगवान तो अंतर्जामी है, सभी जानते हैं, सब मुझे देखना चाहते हैं, किसी का नजर से मैं हटूंगा कैसे, तो सभी को दर्शन देते हैं, तो कुछ समय तो सबको दर्शन किए, सबको कृतार्थ कर दिए। करने के बाद अब आपने निज जन के याद आया, तो जहां गोपगण बड़े विकल होकर हाथ हिला रहे थे, आ जाओ आ जाओ बच्चे इधर आ जाओ, हम कभी से वेट कर रहे हैं आपका, तो उस तरफ पदन्यास किए, पैर बढ़ाए वहां जाने के लिए। कंस तुम्हें बताया था उनको तो साक्षात हो तो कृष्ण बलराम को कृष्ण बलराम रूप नहीं दिखता, कैसे दिखता था? मृत्युर भोजपति, भोजराज कंस तो देखता था कि साक्षात मृत्यु अगर खड़े मेरे सामने। हाँ, मैं बताया था अभी तक कंस ने उनको डायरेक्ट विजन नहीं दिया था, दर्शन नहीं लिया था उनका ना, और दर्शन लेना भी नहीं चाहता था। ऐसा नहीं कि वो चार से नहीं देख सकता था ना, मथुरा सिटी में दो दिन से वो घूम रहे हैं, वो चाहे तो देख सकता था लेकिन दर्शन करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इतने डर था। जब से अक्रूर को भेजा तब से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था और दिल के धड़कन बहुत तेज हो चुका था, वो तो बड़ी जोर से दबाए ये करके कैसे कैसे मेंटेन करके रह रहा था, तो इसलिए कैसे जाएगा उनके सामने, क्योंकि जब से सुना है वो 8-9 साल पहले 10 साल पहले उसी दिन उनका याद आ रहा है, शादी के समय विदाई हो रहे थे उनके बहन वसुदेव देवकी, रथ चलाते हुए जब उनको आकाशवाणी सुनाई पड़ा था उन्हीं की अष्टम गर्भ तेरा काल है, वो बिल्कुल हूबहू याद है, अभी भी स्मरण है, वही अष्टम गर्भ है, नारद जी बता पक्का कर दिए हैं। तब तो कभी उनका सामना नहीं जाना था, क्योंकि कई दिन से उनका भय उन्माद होता था। कभी आपने रथ पर चलने के अपने घोड़े के ऊपर जाता था चौंक कर खड़े होता था, पता नहीं उन्होंने नरसिंह बना था, क्या भरोसा उसको, हाफ लायन हाफ मैन हो गया था, ये घोड़े के ऊपर ना आ जाए क्या फर्क पड़ता है घोड़ा बन जाने में घोड़े हाथी कुछ भी बन सकता हो, तो जलचर थलचर कुछ भी बन सकता हो, कैसे विश्वास किया जाए। इतने डरता था, इतने याद करता था कृष्ण को, बैठते उठते खाते पीते सोते जगते चलते हमेशा कृष्ण स्मरण। हम लोग भगत करते बोलते हैं लेकिन इतना स्मरण ऐसा नहीं कर पाते, जितना अखंड स्मरण वो कर रहा था, कभी खंडित नहीं होता था उसका किसी प्रकार क्रिया मुद्रा, वो चाहता था खंडित करने, बड़ी प्रयास करता था लेकिन हो नहीं रहा था, स्मरण कभी रुक नहीं रहा था उसको। सोने के प्रयास करे तब भी, चलने खाने कुछ भी करे, उनको कृष्ण स्मरण से रोका नहीं जा सकता था। क्या स्थिति था उसका, भले भले भय के मारे करता था, लेकिन शत्रु की हिसाब से करता था, लेकिन करता तो था कृष्ण को। ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण के बारे में, उनके तत्व बोलते हैं ब्रह्म संहिता का क्या श्लोक है वो लास्ट वाला, ना उसका पहले जो संबंध है ना सारे, वात्सल्य मूर्ख गुरु गौरव सभ्य भाव सचिंतित, उसका शुरुआत कैसे, हाँ, यं क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मूर्ख गुरु गौरव सभ्य भाव सचिंत तस्य सदृ सिंह तनुमापुरे ते गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बोलते हैं कि भगवान कृष्ण किस प्रकार के व्यक्ति है, किस प्रकार के तत्व है, जिनको कोई भी व्यक्ति क्रोध के मारे, जम क्रोध, क्रोध के मारे उनसे संबंध रखे उनका भी कल्याण होगा, क्योंकि वो तो अब्सोल्यूट है ना, उनको ये क्रोध हिंसा गाली बोले उनके पास कोई नहीं जाता, उनके पास सब प्यूरिफाइड होकर जाता है। हम यहां से पत्थर मारे उनको फूल मिले, कुछ भी करे उनका पास तो कुछ भी पहुंचे, उनको कस करके गाली दो ये वंदना हो जाएगा, खुश होंगे आपका कल्याण होगा, लेकिन कृष्ण को गाली दो तब, बाकी किसको देने से नहीं हो। उनके साथ क्रोध करो ईर्ष्या करो कुछ भी करो आपका भलाई तो होगा ही अगर उनके साथ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यम क्रोध, जिनके साथ क्रोध करो तो आपका कल्याण होगा, उनके साथ काम करो लक्ष्मी जर हो तब भी कल्याण होगा, यंग क्रोध काम सहज सहज में करो तब भी भलाई होगा, यंग क्रोध काम सहज प्रणय उनके साथ प्रणय करो तब भी भलाई होगा, प्रणयादि भीति, डरो उनसे तब भी भलाई है। यं क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य, वात्सल्य भाव में संबंध करो तब भी भलाई होगा। गुरु भाव में वात्सल्य गुरु, गौरव सभ्य भाव ही सेवा करो, कुछ भी करो। सचिंत्य तस्य सदृशिंग तनुमापुरेत, जैसा जैसा उनके बारे में चिंतन करो ऐसे 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 अनुपजे यथा मांग प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। ये भगवान के वचन है, जो मुझे जैसे करेंगे मैं उनको ऐसे रूप में, लेकिन उनका कल्याण तो करूंगा ही, क्योंकि भगवान कभी किसी का अकल्याण कर ही नहीं सकते। गॉड इज गुड, हमेशा भला ही कर सकते हैं, उनसे किसी का बुरा चाह कर भी नहीं हो सकता। खूब प्रयास करे, खूब प्रयास करे उनका बुरा करूंगा, हो ही नहीं सकता, वो भला ही हो जाएगा। ये भगवान की लाचारपन है, बहुत प्रयास भी करे, कितने कसर उठा ले, उनसे बुरा किसी का नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, ये उनका स्वरूप है। तो इस प्रकार कंस भले उनको शत्रु माने, गाली दे, भय करे, लेकिन बिचारा का कल्याण, कृष्ण स्मरण तो हो ही रहा है। तो इस प्रकार स्मरण करते करते वो देख रहा था इतने अपूर्व स्वभावय रूप, जिनको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग कितने कितने देख रहे हैं, लेकिन कंस साक्षात मृत्यु रूप में देखा था। मूर्तिमंत मृत्यु मेरे सामने खड़े हैं मारने के लिए मुझे, प्रकट फर्स्ट साइड देखा उन्होंने, प्रथम बार उनको दर्शन किया। अब सोच रहा था, क्या सोच रहा था वो जाने, खुद तो बुलाया था उनको, अब बुलाकर कभी देख नहीं रहा था, अभी आगे सामने दर्शन दिए, खुद आकर दर्शन दे रहे। वो तो प्लानिंग क्या था, मर जाए बाहर से, हाथी लगा दिया था, बहुत प्रयास किया था मरवाने के लिए, तो मरे थोड़ी, सबको मार मुर के अंदर आ गए। हाँ उनको तारना था, हाँ उनको दर्शन दिए, वो बेचारा देख रहे, और बाकी उनको छोड़ करके सारे जनता उनको देख करके हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के स्तुति कर रहा है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तमंति दिव्य स्तवे वेदे संघ पद क्रम निषदेर गायंती जंग सामगा ध्यानावस्थित तदगत मनसा पश्यंती जंग जोगिन यस्यांतं न विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। इस प्रकार इन परम पुरुष परमेश्वर देव को सब प्रणाम कर रहे हैं, उनको ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो जैसे जिसका भावना है उनको इसी रूप में देखते हैं। जैसे उन्हें उन तरफ बढ़े, सबसे पहले कंस चौंका, ओ सावधान हुआ, सावधान होकर दहाड़ा, तो क्या हुआ, हाथी के मार दे तो क्या हो गया, कौन सा बड़ी बात है, वो हाथी की तो मैं भी मार सकता था, मैं शादी होने से पहले उसको खूब खींचे कर किया था, अब तो हाथी बूढ़ा हो चुका था, ये बूढ़े हाथी के मार दे कौन सा बड़ी, मैं तो मानता था कि मर जाएगा, मैं पहले से मान कर रखा था, इसके लिए व्यवस्था पहले से करके रखा था, मल्ल क्रीड़ा व्यवस्था क्या, तुम जानता था हाथी शायद मर जाए, बूढ़ा है, तो कौन सा है हाथी को मार के आगे, बड़ी बात है। ऐसे चिल्लाया, चिल्ला करके बोला, मल्ल आदेश दे रहा था, आप खड़े क्यों है, पकड़ लो उनको, जल्दी उनको पकड़ लो। हाँ, एक हाथी के मार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो थक नहीं गए होंगे, एक साधारण हाथी थोड़ी था, 10,000 हाथियों के बल था उसका अंदर, उनके साथ लड़ लड़ करके जब आए खूब थक गए होंगे, ऐसा बात नहीं, नहीं थके होंगे, अधमरे तो हो चुके होंगे। अब मेरे मल्ल साला में सकड़ों महामहामल्ल है, पांच तो मुख्य महामल्ल है ये, उनके अलावा और सकड़ों हैं, विशाल विशाल वज्र का शरीर वाले, उनके साथ कितने गुजलेंगे, इसमें तो एक एक अनेक ऐसे ऐसे मल्ल है जो हाथी को मार सकते थे, ऐसा नहीं कि उनके साथ इतने बलशाली मल्ल है जो हाथी को मार सकते थे, वो हाथी को मार दिया, बूढ़ा हाथी कौन सा बड़ी बात है, तो हमेशा इशारा करता था कि पकड़ लो उनको, खींच लो उनको, लेकिन बाजा फाजा सब बंद, क्या करे, वो गर्जना करके खड़ा हो गया, खड़ा होकर मल्ल मारू बाजा बजने लगे, एक जो मल्ल कुश्ती होता ना, एक स्पेशल धुन के बाजा बजता है, अब देखा ना कभी कुश्ती होता है, जब कुश्ती के एक बाजा का एक ताल होता है राग, उसको मल्ल मारू बोलते हैं, वो बजा वाले सब बैठे थे, वो तो देख रहे थे, हाथ नहीं चल रहा था उनका, रूप देख रहे थे, लेकिन सबको ये उनका जो उनका अटेंटिवनेस, जो एकाग्रता था, वही भंग किया कंस ने, कि सब क्या देख रहे हैं उनको, बंद कर सब, बजाओ बाजा, तो वो तो कंस चिल्ला रहा था, लेकिन राम श्याम सखाओं के साथ अपने स्वजनों की ओर बढ़ रहे थे, बोला अरे यहाँ क्या जा रहे हैं, इधर जाना चाहिए उनको, इधर क्यों आ रहे, तो चाणूर और मुष्टी को तो कई घंटों से कसरत कर रहे थे, मतलब अखाड़ा सलीम कई घंटों से कर रहे थे, कई घंटों से दंड बैठी की कसरत करते करते उनका पसीना नहीं छूटा था, उनको देखने के बाद धमधम धमधम पसीना निकल रहा है, क्योंकि उनको तो दूसरा दर्शन हो रहा है, उनको थोड़ी बच्चे दिखने पड़ रहे, वो तो देख रहे हैं कि साक्षात पता नहीं उनका बॉडी कौन सा मेटल में बना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, उनको इसी दिखे पड़ रहा था। अब क्या करे, उपाय नहीं, कंस सारे तरफ से दरवाजा बंद कर दिया है, अब आदेश दे रहा है कि मुख्य दरवाजे बंद कर दिया जाए। वो सोच रहा था कि थक तो बहुत गए होंगे, बहुत थके मंदे होंगे, अब मल्लों के साथ लड़ाएगा, भागना चाहिए, बच्चे बड़े बदमाश है, वो चंचल है, भाग जाते हैं, अगर भाग जाए उसको पीछे पकड़ के कोई पकड़ पाए नहीं पाए, मोटे मोटे तगड़ा मल है, दौड़ नहीं पाएंगे उनके साथ, तो इसलिए दरवाजा बंद कर दो, किसी को बाहर बच के नहीं छोड़ेंगे, आज तो वही महासमाहार कर दूंगा सबका, तो दरवाजा बंद करो, सब गेट बंद करवा दिया। मूर्ख है, गेट बंद कर खुद मरेगा, लेकिन बंद करा रहा है। सब गेट बंद करा दिया, ये आशा था कि बाहर भाग ना जाए, वो बोलता थक गए होंगे भाग जाएंगे डर के मारे, फिर उनके पीछे कौन पकड़ेगा, तो बंद कर दो सब। बंद करने के बाद जोर से चिल्लाया, क्यों खड़े हो, बुलाओ उनको, मतलब सलीम बुलाओ। और चाणूर मुष्टिक जब नहीं चाहते थे, उनका हृदय तो कांप रहा था, लेकिन करे क्या बेचारे, इतने दिन से प्रैक्टिस करके वादा किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं, तो करना पड़ेगा भाई। तो चाणूर आगे आकर बोलने लगे, बोले हे कृष्णा, हे बलराम, सुनो, इधर क्यों जा रहे, रुको इधर आओ। दोनों कृष्ण और बलराम खड़े हो गए, क्या बात है, क्या बोल रहे, देखो आप दोनों का बल पुरुष के बारे में खूब सुन करके जान करके हमारे महाराज अधिराज आप दोनों को बुलाए, हम दोनों के साथ अब निजुद्ध होगा, हाँ लड़ाई होगा, वो देखेंगे, तो देखो वो हमारे महाराज है, हम सब उनके प्रजा है, एक प्रजा का धर्म होता है राजा को प्रसन्न करना, काय मन वाक्य हर प्रकार से राजा को प्रसन्न करने से ही हमारा कल्याण है, इससे ही हमारा धर्म है, तो आप किसी भी प्रकार से महाराज कंस को प्रसन्न करने के लिए आ जाओ, वो खुश होना चाहते हैं, हमारे साथ लड़ाई करो आओ, ऐसे इन्वाइट किया उनको। तो श्याम सुंदर ने खड़ा होकर बोले, अरे भाई चाणूर, आप तो मल्ल सभा के सदस्य हो, आप तो महामहा मल्ल हो, वज्र का शरीर आपका, आप मल्ल क्रीड़ा का जो नीति नियम होता है, दाव पंच आपको सब पता है, हम तो कोई ट्रेनिंग फनिंग लिए नहीं, हम तो शुरू से गाय बछड़ा के पीछे भागे, गाय चरा चरते गोप हैं, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है, कुश्ती कसरत कभी किए नहीं, और आपके साथ लड़ने के लिए आप वज्रकाय शरीर, हम बच्चे हैं, अभी तक 11 साल के हैं, युवक भी नहीं हुए, सोच रहे ना आप 11 साल के थे, वो इसी उम्र है आपके साथ लड़ने के लिए। चाणूर मुष्टिक दोनों आगे बोले, अरे किसकी बात कह रहे, हंसेगा नहीं दुनिया, क्यों तुम बालक हो, तुम दुर्बल हो, किसको कहेगा ये बात, अरे अभी गेट के बाहर में महाहस्ती कुबड़े अपुड़ को मार के आया, 10,000 हाथियों के बल रखने वाले गज को ऐसे मार दिया, तू बोलता है कि तू बालक हो, कौन बालक है इसे हाथी के साथ लड़के मार सकता, ये सारे समुदाय मिलकर के उनका सामना नहीं कर सकते, तू अकेला मार दिया उनको, बोलते बालक हो तू, सबसे बलवान से महाबली हो, आप ऐसे हमको चीटिंग मत करो, आ जा महाराज आपको ठीक पहचानते हैं। अब जैसे अब बुलाया उनको, बुला करके आपने लंगूट कस करके ताल ठोक दिया, ऐसे चुनौती दिया, अब जो भी हो जाए, राम श्याम का स्वभाव में ये तो कभी नहीं था कि कोई चुनौती उनके दे दे फिर उसको अस्वीकार करते, ना ये नहीं हो सकता, चैलेंज कोई कर ले वो पीछे हट जाए, ना ऐसे कैसे हो सकता, भले आप बोले गोप हैं, लेकिन ये ओरिजिनल क्षत्रिय तो थे ना, वासुदेव के पुत्र तो हैं, पले जाकर गोप के बेस में उनको कोई जाति डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं, बोले भाई क्षत्रिय है कि गोप है, जो भी हो तो चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब वो तो आपने परफेक्ट यूनिफॉर्म है, पहले से तैयार है, वो तो बेचारे रेडी होकर नहीं गए थे, उनको भी लड़ाई करना पड़े, वो तो आपने धोती कछनी पहन कर गए थे, कोई वो मल्ल लोग युद्ध में जो पहनते वो तो नहीं पहने थे, और केवल आपने उत्तरी को कमर में कस दिए और बाल को कुंचित बाल को पीछे समेट लिए, माला और रख दिए और गजदंत लिए थे उसको साइड में रख दिए। बोले ठीक है आप जो इससे बड़े चुनौती दे तो हम जाते हैं। जैसे राम श्याम दंगल स्थली की ओर बढ़ने लगे पूरे भरे स्टेडियम हाहाकार करने लगा, सब चित्कार करने लगे, अधर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, हाँ ये कहाँ है वज्र का मल्ल, छोटे छोटे कुसुम सुकुमार बालक है, अभी युवक भी नहीं हुए, उनके साथ लड़ाया जा रहा है, ये कौन सा धर्म है, बिल्कुल नियम नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये कंस महाराज को क्या हो गया, ये कैसे उनको सपना में आया है कि उनके साथ लड़ने के लायक ये है, क्या हो रहा है, जितने स्त्रियां थी सब गर्जन तर्जन करने लगे, ये क्या हो रहा है, इस अधर्म को हम देखने के लिए आए थे, हम कैसे देख सकते हैं उसको, ये तो बहुत गलत हो रहा है यहाँ, अरे कोई कुश्ती लड़ाई समासकंद के साथ होता है, ये क्या हो रहा है, लेकिन कौन सुने, पुलिस तो सब चिल्लाते हैं साइलेंट साइलेंट चुप बैठो सब, कोई उठ नहीं सकता, कोई बातचीत नहीं कर सकता, अरे बात नहीं कर सकते आप उनको बदम बंद करो, ये क्या हो रहा है, ये कोई इवेंट है, कौन सुने, योजना तो ही है। जितने सारे चित्कार करने लगे, कितने सारे पुकार करने लगे सारे जनता, लेकिन कौन सुने। अब देखते देखते राम श्याम पहुंच गए अखड़ा स्थली में, अब दोनों चाणूर और मुष्टिक के सामने जूझ पड़े, चाणूर के साथ श्याम, मुष्टिक के साथ राम, दोनों सामना सामने गुथ गए। अखड़ा स्थली तो ऐसे सजा करके रखे थे, खूब सेंट पेंट डालकर, मैं बोला था ना जैसे पंड्स पाउडर की तरह बना के रखते, इतने मुलायम स्निग्ध बना चुके थे, और उन लोग को अखड़ा स्थल से क्या मतलब है राम श्याम, उनका कोई मल्ल के जैसे यूनिफॉर्म पहुंचना कुछ नहीं था। जैसे पहुंच गए मल्ल मारू जो बाजा वो तीव्र गति से बजने लगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते बाजा का साउंड ही ऐसा होता है कि अब उत्तेजना देता है, लड़ो मरो जा करके, तो इसे उत्तेजना क्रिएट किया वाद्य ध्वनि, तो बेचारे पंतराले के पैर उठा करके चाणूर मुष्टिक आगे बढ़े। जब मैच शुरू होता है, आप लोग तो कुछ खेल देखे होंगे, दोनों तरफ के जो लीडर होते हैं ना वो दोनों हाथ मिलाते ना पहले मैच शुरू होने से पहले, तो मुष्टिक के साथ राम चाणूर के साथ श्याम दोनों हाथ मिलाने आए, अभी मल्ल युद्ध से पहले हाथ मिलाते, जब हाथ मिलाए हैंडशेक करते समय उनको लगा कि कोई प्लास पकड़ा हुआ है कि क्या पकड़ा हुआ है, ये हड्डी फड्डी है ना नहीं उसका अंदर, वो चिल्ला भी नहीं पा रहे थे बेचारे, आंख लाल पड़ रहे आंसू निकल रहा था, लेकिन पब्लिक तो देख नहीं रहे हमको, इतने बड़े शरीरी बच्चा है लेकिन हाथ हाथ से तोड़ ताड़ दिया, इतने कष्ट हो रहा था उनको, झुंझुना रहा था हाथ सारे, हैंडशेक में उनको लगा तो गए रे गए, आज तो क्या होगा पता नहीं, अब जो होगा अब इज्जत की सवाल है, लड़ना तो है, तो पूरी कसर दे करके लड़े, हाथ से हाथ छाती से छाती पैर से पैर खूब धमाका से लड़े, आग निकल रहा था ऐसे वर्णन आता है, अग्निस्फुरित हो रहा था इतने जोर से लग रहे थे। उनका इस प्रकार के दुर्दांत युद्ध को देख करके स्टेडियम में विशेष करके जो स्त्रियां बैठी थी, ये सब केस में तो स्त्रियां ज्यादा संख्या में जाते हैं, वो जो बैठे थे ओहो हो उनका तो हृदय कातर होने लगा, सब बहुत रोते रोते सोर से चिल्लाते बोली क्या हो रहा है, ये लोग बंद क्यों नहीं कर रहे, सब बड़े बड़े सामंत महाराज बैठे हैं, कंस तो पागल हो गया, बंद करना चाहिए, अगर बंद नहीं करते उठकर चला जाना चाहिए, अधर्म को जो देखेगा जो सपोर्ट करेगा वो भी पाप के भागी होगा, हम क्या करें, हम उठकर जा भी नहीं सकते, गेट बंद है, कहां जाए, नहीं तो हम चली भी जाती, ये महाराज हमको छोड़ते भी नहीं, यही रूप दिखाने के लिए हम निमंत्रण किया था, हम आए मल्ल सभा में इतने बड़े फेस्टिवल देखने, फेस्टिवल में यही देखते हैं, ये तो महापाप है, इसको देखना भी अधर्म है, कैसे देखेंगे उसको, हाय हाय, लेकिन कोई उपाय नहीं था। बेचारे नंद बाबा और बाकी गोपों का तो क्या करे, मुख विवर्ण हो चुका था, धार धार आंसू बह रहा था, बिल्कुल उचक करके इसे रो रहे थे, किंतु जानते हैं कुछ चिल्लाएंगे आवाज करेंगे तो पता नहीं कौन से इतने रिसन से है, उनको क्या कर गया, बालकों के ऊपर क्या एक्शन ले सकता है और कुछ गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए बेचारे शांत बैठे थे, जबरदस्ती कोई उपाय नहीं था, लेकिन बिल्कुल मुख में उनका विकार हो चुका था समयों का। कृष्ण बलराम जब गए तो उनके सखा वो भी थोड़ी छोड़ के कोई जाएंगे स्टेडियम में, वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। अभी 500 जो उनके दोस्त थे सखा लोग उनके साथ काल भी ड्यूटी घूमे थे मथुरा, वो तो काल देखे हैं, तो उनको क्या डर है, उनके साथ चल पड़े। वो जाकर के अखाड़ा स्थल पर से कोई नहीं, सब दूर दूर स्टेडियम बैठे, वो जाकर ही पहुंच गए। जैसे दोनों अखाड़ा के लिए कुश्ती करने के लिए चल गए, हम बोले हम यही बैठेंगे। तो बाकी पुलिस लोग भी महाराज को देखे, महाराज बोले कोई बात नहीं, बच्चे हैं बैठ जाने तो क्या फर्क पड़ा है, वो दोनों मरेंगे उनको मरवा देंगे, इसी को चल जाएंगे कि वो कोई गिर पड़ गया उनके ऊपर ऐसे चटनी हो जाएंगे। बैठे तो छोटे छोटे, तो 5-7-6 साल के लड़के हैं सब, 5-7 साल के उनके सब साथी वैसे बैठ गए जाकर 500, अपना अपना लाठी लेकर बैठ गए। आप लोग तो सब दिल्ली वाले होंगे, मैं आशा करता हूं क्रिकेट मैच तो टीवी में नहीं तो कब देखते होंगे सब, स्टेडियम में जाकर नहीं तो टीवी में तो जरूर देखते होंगे, है ना? नहीं, अनेक प्रतिशत देखते होंगे। अगर कभी कभी ऐसे दिन होता होगा जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच होता होगा और फाइनल डे होगा, और उस दिन देखना अगर कोई उनका बैटिंग चलता होगा चौका मारा उठकर खड़ा हो जाएंगे, अरे वो और कहीं ऑस्ट्रेलिया की और कहीं खेल होता है आपने घर के ऊपर कुर्सी से कूद पड़ेंगे चिल्ला करके, आपने क्या पता नहीं आपका क्या हो रहा है भाई आपको क्या हो रहा है ना? नहीं, कितने इमोशन हो जाते हैं आप सोच सकते हैं, आपका सोच लगाइए जो उनके आजन्म साथी कई दिन से दिन रात उनके साथ खेलना बैठना सोना खाना पीना अपने प्राण सर्वस्व है राम श्याम इस गुप्त सखाओं के, आज तो उनको छोड़ करके वो चेयर पर नहीं बैठे हुई अखड़ा स्थल पर बाजू में बैठ गए, अपने लकुट लेकर के ऐसे कचनी बांध कर बैठ गए, छोटे छोटे नन्हे बालक भी हो क्यों ना हो बैठे हैं। और आज उनके सखा सुकुमार सखा ये विशाल विशाल पर्वत जैसे शरीर वाले दैत्यों से लड़ रहा है, उनका मन में कैसा भाव होता होगा थोड़ा अनुमान लगाए आपने। और जैसे छाती से छाती ठोकराते हैं वो बालक ऐसे होते हैं तुरंत तुरंत ऐसे उचक जाते हैं, अरे आपने बाल सवाते है कूद पड़ूंगा मैं हेल्प करूंगा है, उनको ऐसे धस लेता है। अब जब देखता है कृष्ण उसको पटका देते हैं तब खुशी होते हैं, ठीक है ठीक है, लेकिन फिर उठाता फिर घुस जाते हैं, कब नीचे गिरते थे इसी को चुप कर देखते हैं, फिर उठते हैं फिर इधर देखते हैं, लड़ाई तो उनका हो रहा है एक्चुअली, सारे अंग भंगी उनको लोग देख रहे हैं क्या हो रहे हैं उन लोग के बच्चों के, लेकिन उनको तो कोई ख्याल ही नहीं, वो तो पूरे मन प्राण इंद्रिय पूरे देख रहा है उनको, जो एक्शन इसमें रिएक्शन उसमें हो रहा है, इमीडिएट रिएक्शन उसमें आ रहा है, ऐसे देख रहे हैं कैसे कैसे लड़ाई हो रहा है। अब जब छोटे छोटे बालक लड़ रहे हैं उनको बलराम के लिए इतना चिंता नहीं था, बोलते दाऊ है उनके पास तो बल है चलेगा, लेकिन ये छोटा सा हमारे घनश्याम बड़े सुकुमार है, सारे सखाओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये जो श्याम है सोलोना बड़ा निर्बल दुर्बल है, कोई बल नहीं उसमें, राम तो चलो हट्टे कट्टे है बलवान है लेकिन शाम में बल कहाँ है। सही में जब उनका कभी कुश्ती होता था बछड़ा चराने जाते थे गाय चराने जाते थे तो श्रीदाम ने बरुंथम ने उन तो उनके साथ लाने के तू क्या मेरे साथ लड़ेगा, तू उनके साथ लड़ जाके भद्र तो श्रीदाम वही उनके जोड़ी है, वो भी उनको बार बार पटकाते थे बार बार पटक देते थे, बड़ा पीर समझता ऐसे पटकाते थे। आज वो जाकर के मल्ल से लड़ रहे हैं तो कितने उनके अंदर उत्तेजना हुआ होगा, बिल्कुल अपना हाथ कस जा रहा है मुट्ठी बांध करके दंत कस करके खड़े हो जा रहे हैं बैठ रहे हैं इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं करें क्या। अब लड़ाई चल रहा है सारे स्त्रियां बैठ करके भगवान के मुख कमल को देख रहे हैं, मुख बिल्कुल अरुण हो चुका है, स्वेद बिंदु आ चुका है, पसीने आ चुका है मस्तक पर, पूरे शरीर में जैसे थकावट आया है, इस प्रकार लड़ रहे हैं। जो इतने सुंदर मुख था अभी थोड़ा सा धूल धूसरित लग रहा है, धूल में कई उठे पड़े, उनको देख करके उनके हृदय विकल हो रहा है, वो चिंतन कर रहे हैं कि हम कितने दुर्भागा है। हम आए तो सही उनको देखने के लिए, काल तो देखे थे खिड़की के अंदर बैठे बैठे थोड़ा, आज खुले में खुले में देखने के लिए मंच में आ गए, लेकिन इसी रूप देखना पड़ा। हाय रे दुर्भाग्य, हम ये रूप क्यों दिखा रहा है आपने को, अपने हतभाग्य को, अपने दुर्भाग्य को कोसते कोसते उनके भाग्य को सराहना करने लगे। किन के भाग्य को? जो उनके प्रफुल्ल बदन को बार बार देख रहे थे, वो कौन है? ब्रज गोपिका है। हम तो अभी आज ही आए, कल शाम को देखे थे, अभी दिन में देख रहे हैं। वो तो वर्षों हर लीला में उनको दर्शन कर रहे हैं, और कैसे रूप दर्शन कर रहे थे, इसे लड़ाई झगड़ा का रूप नो? कितने तप किए होंगे, क्या क्या पुण्य किए होंगे वो लोग, जो ऐसे सुंदर जे निधि के मुख चंद्रमा को निहार रहे होंगे, उनका याद आ रहा है, भगवत लीला स्मरण हो रहा है उन लोगों का। जिस समय भगवान ने गोचारण में जाते हैं सखाओं के साथ, जब चले जाते हैं घर से, सखा तो साथ में जाते हैं, उनका कोई चिंता नहीं। जो पुरुष लोग है वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, माताएं भी काम में बिजी हो जाते हैं, जो बालिकाएं हैं कुमारियां हैं उनका तो वही मन रहता है कि कृष्ण को एक बार मन से देख लूं, लेकिन देखने के लिए आए तब तो निकल गए, जाए लेकर के गए, अब जा करके देखे दूर से तो निकल जा रहे, पीछे की तरफ से देखे वो भी सुंदर है। आप एक तक तो वेट करते थे कब वापस आएंगे, सामने तरफ मुख दर्शन होगा। वेट करते करते जब सांझ होता था, गोधुली के समय होता था, लाखों लाखों गाय को सामने लेते हुए, सामने लाखों गाय चलते हैं, पीछे तो कितना धूल उड़ेगा, और धूल में ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, मुंह धूल को गाली देते हैं, अब थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं पड़ता, और धूल के बीच में लाखों बालक हैं, उनके बीच में, उन धूल के गोधुली के बीच में, सांझ के समय में अनेक बालकों के बीच में इन नवघन सुंदर जो वापस आ रहे हैं ब्रज भूमि की ओर, उनका इस वृंदावन प्रवेश का जो रूप उन लोग से सुने हैं, उनकी याद कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कैसे भगवान दिखाई पड़ रहे थे, बरहा पीड़ं नट बर बपु कर्णयो कर्णिकारं, बरहा पीड़ं नट बर बपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रत बासा कनक कपिशो वैजयंती चमाला, रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, वृंदारण्ये स्वपद रमणे प्राविशत गीत कीर्ति। बोलते हैं कैसा रूप है न, बरहा पीड़म, बरहा मतलब मयूर पूछ, मस्तक पर मयूर के पूछ सुशोभित है, सबसे पहले वही दिखाई पड़ रहा है, हिलता है मयूर पूछ, बरहा पीड़म, लेकिन वो हिलता रहता है, क्यों? नटबर, नाचते नाचते आ रहे हैं, ऐसे चल करके नहीं, गमनम अपि नाट्यम, उनका चाली तो नृत्य ही है, नृत्य ठाणी में चलते, इसलिए नटबर नागर है। बरहा पीड़म नटबर बपु, केवल पैर हिलता है, इसलिए पूरे शरीर त्रिभंगी ठाणी में नच रहा है। बरहा पीड़म नटबर बपु कर्णयो कर्णिकारम, कान में कनेर के फूल खोसे हुए हैं, जंगल में गए थे ना, कोई सोने की चांदी के तो अलंकार तो नहीं, वहां जंगली वन फूल के वेश है, वन वेश है बनवाली, कनेर के फूल कान में खुसे हुए, कर्णयो कर्णिकारम, और क्या न बिभ्रत वासहा, जो पीले पीले कपड़े पहने हुए हैं वो बिभ्रत चमक रहा है, सुनेली रंग बिल्कुल सूर्य अभी अस्त हो रहे हैं, उनकी किरण पड़ के चक 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 कर रहा है, बिभ्रत वासहा, कनक कपिशम सोना जैसा चमक रहा है, वैजयंती च मालाहा एक मोटी माला पहने हुए हैं, वो घर से पहन कर गए थे, वो नहीं उसको फेंक दिए वासी, अब सखावे सब फ्रेश फूल जंगल से तोड़ करके, कोई धागा सुई नहीं है जंगल में, धागा सुई नहीं है, फूल तोड़ करके उसको गांठ बांध बांध करके पटुका में और कोई जंगली ऐसे कोई तंतु में बांध करके पांच प्रकार के फूल पत्ता लगा करके मोटी माला गजरा बनाए, उनके सखाओं ने बनाए, बना करके आपने सखा को पहनाए, इनको पहने हुए बिल्कुल घुटने के नीचे लहर रहा है, वैजयंती च माला। और क्या रंध्रान वेणु, अब हाथ में बांसुरी लिए हैं, उसको मुख में लगा रखे हैं, उस वेणु को बजा रहे हैं, गोपी देख रहे हैं उनको बजा थोड़ी रहे हैं, उनका तो ईर्ष्या सबसे ज्यादा वहीं पे है, सबसे ज्यादा उनके प्रति ईर्ष्या करते हैं, बोले देखो हमारा जीवन तो बेकार है, एक सूखा बांस का खंड है, टुकड़ा है, बांसुरी होता है क्या, देखा ना बांसुरी क्या होता है, एक बांस का टुकड़ा होता है ना छोटा सा, और उसमें छेद भी है, मरा हुआ बांस है, मरा हुआ बांस इसमें छह सात छेद भी किया हुआ होल है उसमें, उनका इतने सौभाग्य भगवान के कर कमल पर बैठता है और उनका अधर सुधा को पीता है, बाप रे बाप, जिनके करपर्श तो हमको नहीं मिला, अधर की बात ही दूर है, हमको अधर स्पर्श मिल जाए ये आशा तो हम किए नहीं, करपर्श भी नहीं मिला, ये बांस की टुकड़ा का क्या साहस है, यहां जाकर बैठता है और पीता है, जिसके लिए हम जब तप साधन करके बैठे हैं इतने आस करके, वो सब रक्त सर पी जाता, वो तो अधरामृत तो सारे उसी में घुसता है, वेणु के जो बांस के जो छेद है उस छेद में प्रवेश करता है, इसी बांस के टुकड़ा के छेद में भगवान में अपने अधरामृत पिला रहे हैं, लेकिन ये एक्शन का रिएक्शन कहां हो रहा है, पूरे ब्रज में समस्त गोपी मानस में रिएक्शन हो रहा है, ये बांस के टुकड़ा में फूंक जा रहा है, आवाज जा रहा है, उनका रिएक्शन इधर हो रहा है, रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरे अन गोप वृंदे, सारे गोपी का वृंद का तो हालत खराब है, ये बांसी की लेकर के इतने चर्चा, बोलते बंद करो बांसी बजाना, अभी तो बजाते हैं कभी बजा लेते हैं, उनका नाम क्या है बंसी का जानते ना, मोहन बंसी, ये एक सादा बंसी नहीं है, मोहन बंसी मतलब सबको मोहित कर लेता है, कोई एनेस्थेसिया देना नहीं पड़ेगा इंजेक्शन, कोई ये गैस फास फेंकना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, कहीं पे खड़े होकर पेड़ के ऊपर नीचे फूंक देंगे, एक फूंक मारे दुनिया का खत्म हाल। अब ब्रजमंडल में उसका प्रकट प्रमाण है, जिन जिन गोपियों ने जो देखे आंखों देखा हाल उन लोग का वर्णन है, वो लोग कहते हैं कि भगवान जब कभी कभी अपने बांसुरी उठाकर बजाते थे, जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर में और कदम्ब और तमाल के वन में जब कभी आपने बांसुरी की उठाकर अधर लगाकर फूंक मार देते हैं, सबसे पहले क्या होता है, वो देखते हैं कि सबसे पहले जमुना का किनारे ना, सबसे पहले जमुना जी दिखती है, सुनती है, जमुना जी जड़ है ना, पानी है, ये कोई चेतन प्राणी थोड़ी है, पानी है, लेकिन देखिए ये बांसुरी का ये खूबी, ये प्रभाव है, जड़ भी अपना धर्म बदल देता है, जड़ चेतन होता है, चेतन भी जड़ हो जाएगा, सबसे पहले जमुना जी देखिए उनके किनारे जमुना तीर में बजाते हैं, जमुना जी के पानी का एक धर्म क्या जानते, क्या है, निम्नगा नीरव, माने जो पानी होता है निम्नगा होता है, नीचे की ओर चलता है, कभी पानी ऊपर की ओर चला देखा, पानी का धर्म है नीचे जाना, आग की धर्म है ऊपर की ओर जाना, आग कभी नीचे नहीं जाएगा और पानी कभी ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा ऊपर नहीं, वो दोनों का विपरीत धर्म है, तो इस विपरीत धर्म वाले पानी जो नीचे की ओर बह रहा था उनका बहाव ऊपर की ओर चला, अरे भाई ये क्या होगा, उल्टी प्रभाव जमुना जी में, हाँ उल्टी प्रभाव, किस लिए, इतने भूल गया अपने आप को, आपने धर्म छोड़ दिया कि नीचे की ओर जाना चाहिए, ऊपर की ओर चला जमुना जी के धारा, बांसुरी को सुन करके। केवल जमुना जी नहीं भाई, जमुना जी के अंदर जितने जलचर प्राणी थे, मछली कछुआ आदि, विशेष करके मछली आदि जो जलचर प्राणी है, उनका कान में पड़ा सबसे पहले। वो लोग भूल गए कि हम जलचर प्राणी है, तो पानी छोड़ करके स्थल भाग में आ गए, हाँ छोड़ के आ गए। अब उनका डर नहीं, मरे जो करे, लेकिन भूल गए सब, मरने का भूल गए कि मरेंगे कि बचेंगे, लेकिन ऊपर आ गए सब। ये तो जमुना जी का हाल। वन के अंदर मृग सब घास चर रहे थे, हिरण चर रहे थे सुन। जब उन्होंने सुने, वो बेचारे घास चर रहे थे, चर रहे थे, उनके पहले कान खड़े हो गए दोनों में, फटाफट सब कान सब स्टैंड अप खड़े हो गए, सारे रोमांच हो गया, रोम सारे रोम रोम खड़े हो गए, कान खड़े हो गए। बेचारे घास मुंह में लिए थे, चुबा रहे थे, अब मुंह बंद हो गया, घास मुंह में लेते लेते देखते रहे उनको और सुनते रहे, चुबा नहीं पाए, मुख चालना बंद हो गया। और जमुना किनारे जो जंगल है, यहां आ सकते ना, बीच में जगह है, बीच में आ सकते हैं। तो जो जंगल है, इसमें जो पेड़ है, अनेक पेड़, क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो हमेशा स्प्रिंग सीजन रहता है, बसंत, पूर्ण बसंत, चीर बसंत रहता है वहां। और चीर बसंत में पेड़ लोग सब कपोल, क्या बोलते हैं, नए नए पत्ता आता है ना, बिल्कुल नए पत्ते, जैसे बसंत तो आम कोपले कोपले आते हैं, और आम के आदि पेड़ में वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बकुल, फूल आते हैं, आम होने से पहले उसको क्या बोलते हैं, फूल, हाँ जो भी वो आते हैं, सब इस प्रकार होता है, बड़े सुंदर सुंदर रूप होता है, पेड़ पौधे इतने सुंदरता छा जाते हैं, इतने सुंदर सुंदर बसंत ऋतु का वनराजी का दृश्य, पता नहीं ये साउंड जाते ही सारे जल भुंज कर सारे पत्ता गिर पड़ा सूख करके, एक ही पता नहीं रहा, सारे पत्ते सारे पेड़ से गिर पड़ा, इस पत्र हो गए। और जो सूखे पेड़ थे, जैसे ठंडी के समय में को तुलसा आदि पेड़ होते हैं, तुलसी पेड़ हो जाता ना सारे पेड़, उस पड़ने से सारे पत्ता गायब, खाली सारे ठुंटे खड़े रहते हैं। अब सब देखिए, मैंने तुलसा जिसका घर में होगा वो जानते होंगे। अब ये जो ठुंटे खड़े थे, उनके से पूरा आ गया पत्ता ही पत्ता, मंजरी खिल गया उसमें, पत्ता और मंजरी भर गया, और इसमें तो सारे पेड़ झड़ गया, अद्भुत हो रहा है कार्य। अब तो ये पशु पक्षी जड़ धर्म के बात है। अब वो सूर थोड़ा आगे चला, आगे आकर के गांव में प्रवेश किया। अब जो जैसे था, विशेष करके पुरुषों के कान में सुनाई नहीं पड़ता था ना, वो केवल वो तान छोड़ते थे बांसुरी, पता नहीं क्या कंट्रोल था उनके पास में, केवल पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति के पास उसी प्रकार जाएगा, जैसे आजकल कोई ईमेल भेजते ना, दूसरे के पास नहीं जाएगा, जो पासवर्ड जानते हैं वही खोल सकता है, ठीक इसी प्रकार बांसुरी की आवाज जाता था, पर्टिकुलर आईडी में जाकर पहुंचता था, किसको क्या बोलना है आवाज वहीं उसी को पहुंचता था, ठीक इसी प्रकार ईमेल आईडी के अनुसार जाता था, बाकी कोई पता नहीं चलता था। और उनको तो जब उनको मेल मिला, वो तो समझो उनका तो वर्णन ही बता नहीं सकता आपने, सारे कुल परंपरा लज्जा संसार धर्म सब छोड़ करके पागल होकर भाग जाते थे, सब कुछ तोड़ जाता था। तो इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हे नवघन सुंदर, अभी तो बंद करो, अब क्या करेगा, सबको तो इसे नचा दिया, पागल कर दिया, अब तो बंद रोको। ऐसे मोहन वंशी का प्रताप, उन वंशी को बजाते हुए, वैजयंती माला को लहराते हुए, नाचते हुए, मर पुछ को हिलाते हुए, कान में कनेर फूल खोजते हुए, वृंदारण्य शपद रमणे, इस वृंदारूपी अरण्य में आपने पद विन्यास में चप्पल नहीं पहने हैं, मुक्त खाली पैर में जब प्रवेश कर रहे हैं, उनका जो रूप उनका जो कीर्ति इसी प्रकार है, ऐसा दर्शन करते हैं। इसी को जो गोपी लोग ने देखे थे, वो बारंबार प्रतिदिन यही हाल होता, एवरी डे ऐसा रूप देखते हैं उन्होंने, उनको याद करके सारे नगर नारी जितने स्त्रियां थे टाउन वाले सिटी में मथुरा सिटी में सारे आपने आप को धिक्कार कर रहे हैं, धिक है हमारे भाग्य को, धिक है, हम आए सज सज कर देखने के लिए क्या देख रहे हैं, थके हुए पसीना बूंद लगा हुआ है शरीर में, पूरे सारे लड़ रहे हैं उनके साथ, और इतने सुंदर रूप को बारंबार देखती रही है गोपी, हाय हाय हाय, हम दुर्भाग्यनी क्यों नहीं गोपी बने, क्यों स्कूल में जन्म हुए, क्यों इस घर में जन्म हुए, अगर हम ग्वालिन होती गोपी होती न क्या होता, ना कोई बात नहीं, गोबर थापती गोबर उठाती गाय दुहना पड़ती, कभी कभी गोबर साफ करना पड़ती होगी, कभी कभी दही मंथन करना पड़ती होगी, बच्चे को जो गोपियों का जो काम उसी को कंटेम्प्लेट उसी को सब सोचते हैं कि इसे से काम करना फिर भी अच्छा है ना, नहीं ये काम फिर भी महाभाग्य है, इस प्रकार टाउन में रह करके कोई काम दाम नहीं करके बैठे बैठे टीवी खोलकर बैठने से अलावा तो बहुत अच्छा है, कोई कंटामिनेशन नहीं, कितने पवित्र जीवन है, गोबर लिपती कंडा लिपती दूध गर्म करती दधि मंथन करती मक्खन निकलती, ये जो इतने सुंदर सुंदर जो चित्रण को याद करके सारे मथुरा की स्त्रियां आपने आपको धिक्कार करती है, कुश्ती रहती है और रोती रहती है, क्यों हमके रूप दिखाया, सब आंख के ऊपर हाथ देती है ना, हम नहीं देखना चाहती, बहुत हो गया, ये निशंस कंस ये क्या कर रहा है, हमारा छाती फट रहा है उनको देख करके, ये रूप हम देखने थोड़ी आए थे, जो सौंदर्य के निधि है उनको इस प्रकार क्यों कर रहे हैं उन्होंने, लेकिन कौन सुने, कोई सुनने वाला तो नहीं है, सब विकल होकर देख रहे हैं, और इधर कुश्ती बढ़ रहा है, आपने बिल्कुल शिखर पर मेन पॉइंट पर आकर पहुंच चुका है, जो गोप सखा में बैठे थे उनका छोटे छोटे बालक है ना, उनके धैर्य की सीमा भी बड़े कम होता छोटी होती है, ज्यादा धैर्य नहीं, छोटे बच्चे हैं कहाँ तक धीरज धारण करेंगे, घंटा आधा घंटा बहुत हो गया, आधा घंटा में उनका हालत खराब, बोले सखा हमारा थक गया है पसीना निकल रहा है उनको मदद चाहिए, अब तो वो कमर कस करके कूदने के लिए तैयार, अरे हे कृष्ण सोच रहे कूदेंगे किसी का पैर में लग जाएंगे तो वहीं उनका हाल खराब हो जाएगा, लेकिन ये बच्चे थोड़ी मानते, वो तो दांत कस करके हाथ कस करके कमर कस करके निकलना चाहते हैं, उनका सखा कितनी देर से लड़ रहा है थक गया हा? ये उनको छोड़ते नहीं अभी तक लड़ रहे, लेकिन वास्तविकता कुछ और था, श्याम के साथ चाणूर तो लड़ रहा था पूरी ताकत लगा करके जितने दाव पंच था, अब चाणूर का पूरे वर्ष में भारत वर्ष में बड़े कुख्यात था, सुख्यात नहीं बड़े कुख्यात था, जब किसके साथ मल्ल युद्ध करता था बेनियम में नियम पालन किए बिना भूल टूल करके कैसे भी पछड़ कर मार देना, सबको हत्या करता था प्रतिद्वंदी को बिना नियम के साथ मारता था, इसलिए उनका बड़ा उनका ख्यात था कि इसे बड़े बदमाश है, वो भी जानते थे ये चाणूर तो है तो बेकार करेगा, जो नियम है मल्ल युद्ध का उसको पालन करता नहीं उन्होंने, वो अपने पूरी कोशिश जितने नियम तोड़ना है जोड़ना है सब कर चुका, सारे फॉर्मूला लगा चुका है, आप जब ही कभी कभी कृष्ण उसको छाती पकड़ लेते हैं, दोनों को पकड़ लेते हैं, पकड़ करके कृष्ण उसको इसे छाती में थोड़ा कस करके पकड़ते हैं, तो चाणूर को लगता है कि मेरे हड्डी पसली छाती किसी चूर चूर हो रहा है, सब टूटा फ्रैक्चर हो गया, पता नहीं कितनी फ्रैक्चर हुआ है, तो गिर पड़ता है नीचे गिर पड़ता है तो जांघ में इसे आंठू दबा करके उनको दबा देते हैं, दबाते तो लगता है कि मेरुदंड भी गया, अब जो हा व्याकबोन वो भी गया, सामने छाती गया था व्याकबोन भी गया, आप तो कोई अर्थोपेडिक सर्जन के पास जाऊं वो भी शायद फेल मारेगा, वो बोला कितना फ्रैक्चर में क्या करूं, वो बेचारे दुखी हो रहे थे, अब हड्डी सामने आगे पीछे तो हाथ तो पहले से हैंडशेक करके तोड़ दिए थे, अब बेचारा जितने दाव पेंच ठिला पिला घिसा पट्टी करके सारे हार चुका था, अभी वो बचना चाह रहा था, अब लड़ नहीं रहा था, लड़ना चाहता भी नहीं था ना, अब तो भागना ही चाह रहा था, बचना चाह रहा था, कैसे बचूं, चारों ओर देख रहा था कोई रास्ता खुला है, भाग जाऊं, प्राण तो बचे सही इज्जत से क्या मतलब है भाई, अभी मरने का दाव है, कैसे भागूं। लेकिन एक आप तो जानते हैं श्याम सुंदर का एक विशेष स्वभाव है, जिसको पकड़ ले छोड़ते नहीं, तो जाएंगे कैसे उनसे पकड़ से बाहर। आपने कुछ छुड़ाना चाह रहा था, बड़े कड़बड़ करके कैसे छोड़ू, भाग जाऊं तो ये जो हो जाए, दरवाजा तोड़ कर दीवार खुद कर चला जाऊंगा, जो होगा, जख्म तो इतने हुआ है और जख्म हो जाएगा, बस तो जाऊंगा कम से कम, मैं दिल्ली जाकर एडमिशन कर लूंगा हॉस्पिटल में। लेकिन ये छोड़ नहीं रहा, बड़े मुश्किल से लड़ नहीं रहा था, प्रतिकार बहुत छुड़ाना, कैसे 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 पसीना हो चुका था, बड़े मुश्किल से छुड़ा लिया अपने को, छुड़ा करके भाग रहा था, लेकिन कृष्ण जब करके पकड़ ली, बोली छोड़ नहीं रहा, क्या करूं, गिरने से मारता है, छोड़ने से पकड़ता है, अब करूं क्या। तो देखा कि और कोई उपाय नहीं है, छोड़ भी नहीं रहा है, पड़ जाता तो उठता नहीं, उठेगा नहीं, वही कचंबर करते हैं, बोले करूं क्या। तो बोला मरने से पहले ऐसे ही मरूंगा, तो मुष्टिका घात, अभी मल्ल युद्ध में ये मुक्केबाजी नहीं करना चाहिए था, लेकिन बोला अभी फॉर्मूला क्या, देखो नियम निष्ठा कुछ नहीं चलेगा, अब जैसे छुड़ा, दो हाथ को वज्र मुष्टिका करके भगवान श्याम सुंदर के वही श्रीवत्स अंकित बख्य पर बड़े वेग से प्रहार करने के लिए चला, खूब जोर से मारा दाव लगा करके। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे कोई भारी हाथी हो और मत्त हस्ती हो, विशाल मत्त हस्ती को, आपका दिल्ली में तो बहुत बोलता ना फ्लावर पेटल, क्या बोलते हैं उसको, पुष्प स्तवक, फूल के इसे बनाता ना, बोला फूल के थोड़ा छोटे फूल के गुच्छे बंकुट ना, छोटे फूल के पंखुड़ी के गुच्छे, एक के बहुत महान शक्तिशाली मत्त हस्ती को फूल के गुच्छे गुलाब के फेंकेंगे, कितना उसको जख्म लगेगा, इतना ही लगा कृष्ण, ये जो महा प्रहार किया उनको ऐसे ही लगा, वो ऐसे हाथ को हटा देकर पकड़ लिए, उनके हाथ को, दोनों हाथ को पकड़ लिए, वो हाथ जुड़ा हुआ था उनका, पकड़ करके ऐसे छींक लिए, उड़ गया उनका पैर, अरे इतने हाइट लंबा विशाल पर्वत जैसा उड़ गया ऊपर, भारी शरीर उसका, उड़ गया तो उसे घुमाए ऊपर से, फैन जैसे घूमता ना ऐसे घुमाए, भागवत ने कहा जैसे कुम्हार की चक्का, तब जो ना तो फैन थे ना, तो इसलिए ये उदाहरण दिए उन्होंने, कुम्हार जानते ना जो घड़ा बनाते हैं, उसके जो मिट्टी का घड़ा लगता है कैसे चक्का घूमता है उसका, तो ऐसे ही चक्का जैसा घुमाया उनको, चाणूर के शरीर को उठाकर पकड़े ऐसे घुमाए, चाणूर बेचारा इतने जोर से घुमा तो उनको सारे अंधकार अंधकार दिखाई पड़ा, उनके शरीर से आंख से और कुछ लाइट नहीं दिखा, सारे अंधकार हो गया, सारे डार्क 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 चारों तरफ अंधकार हो गया, तब इतने विकल होने लगा, गौ 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 साउंड करने लगा, बड़े अद्भुत गर्जना निकला उनसे, क्योंकि प्राण निकलने वाला है उसको भी, तभी नहीं छोड़ रहे, इतने गर्जना करने लगा, आंख निकल पड़ा, नाक से और मुख से दोनों ओर से रक्त निकलने लगा, तब भगवान बोले चलो अब छोड़, तो उठा करके वहीं पटक दिए, वहीं पटक दिए, कोई तड़पना फड़क, कोई चित्कार नहीं, शांत छट वही गिर पड़ा, खत्म, वो वहीं से मर चुका था, ऊपर से लाश ही गिरा नीचे, लाश गिरा दिया, शांत गिरा, कोई तड़ फड़क नहीं, कुछ नहीं, मरते पहले तो हाथ पर पीटते ना, कुछ भी नहीं किया, शांत हो गया। ठीक उसी समय में राम के साथ जो भिड़ा था मुष्टिक, उनका भी वही हाल था, वो भी बसना चाह रहा था, कि उनका भी हड्डी पसली समान हो चुका था, सारा टूट फूट चुका था, उन्होंने मन में सोच रहा था पता नहीं उनके शरीर कौन सा मेटल में बनी हुई, हम पूरी ताकत लगा दी कुछ होता नहीं उनका, वो तो बड़ी संदिग्ध था, लेकिन उन्होंने बड़े मुश्किल से अपने आप को बचाया, बचा करके उन्होंने भी एक मुष्टिका मारना चाह रहा था, बलराम जी तो खिलाड़ी है बहुत, वो तो जानते हैं भाई गदा युद्ध के ज्ञान है, ये सिन्हा चंचल है श्याम सुंदर, लेकिन वो तो गंभीर है, वो तो जानते हैं नीति नियम जानते हैं, बोले अरे बदमाश मल्ल युद्ध में गुस्सेबाजी क्यों, ये क्या कर रहा है तूने, गलती कर रहा है। भगवान को क्रोध आ गया क्योंकि बेनियम काम कर रहा है। लेकिन वो नेम बचना चाह रहा था अभी, लेकिन जैसे गुस्सा उठा के मारने आया, तो मारने से पहले भगवान राम ने, जिसका नाम बलि ही है, हाथ उठा करके उन्हें कनपट्टी पर एक थप्पड़ मारे, तड़क करके साउंड हुआ, इतने जबरदस्त साउंड हुआ पूरे स्टेडियम के लोग सब खड़े हो गए झूम करके, क्या हुआ क्या हुआ, सब चौंक खड़े हो गए। भयानक शब्द हुआ और उस शब्द के मारे पूरा कनपट्टी पर मारे थे उसको, तो जैसे सुरापान करके लोग माताल होकर ऐसे चलता ना, ऐसे टलते 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 धुम करके गिरा, थोड़ा थड़फड़ाया फटफड़ाया और सारे सर फट चुका था उनका, सर फट करके सारे ब्लड निकल रहा था, सारे हाल खराब, तो वही पड़ करके वही मरा, दोनों का डेड बॉडी वहीं पड़ गया। वही अखड़ा स्थली का जो बहुत सुंदर सिग्न कोमल बालुका में था, कुछ अंश तो रक्त में खींच होने लगा, रक्त धारा बहने लग करके, उसको देखते ही जो उनका मल्लों का जो कोच था ना, कोच जानते ना किसे बोलते हैं, जो मल्ल क्रीड़ा सिखाते हैं उनका ट्रेनर, उनका नाम था कूट, वो गुस्से में दांत पीस करके दौड़ा, मारो उनको, पढ़ो उनको, अरे मेरे दो दो मेन मल्ल को मार दिए बदमाश, ये लड़के कौन है, ये से पकड़ो, एक बार गुस्से में दौड़ करके आया। कंस महाराज का तो पूर्ण प्राण उनके आंख में आकर बैठा था, वो देख रहे थे बिल्कुल, जैसे बालक इधर चौंक रहे थे वो भी ऐसे चौंक रहा था ऊपर से, बालक जो साथी मल्ल कीड़ा के पास में बैठ करके इसे इसे एक्शन देख रहे थे, ठीक सिमिलर एक्शन कंस का इधर भी होता था, वो भी जब इधर से था उन पार्टी के थे, उन पार्टी के थे, दोनों पार्टी इमोशन में है। जब वो पार्टी वाला मर गए तो कंस का भी सर से तो सारे पसीना उतर गया उनका भी, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। चलो जब कूट निकला चिल्ला करके, तो जहां अब कुछ करेगा, गुस्सा में कूट, वो तो मास्टर था, एक बार चित्कार करके हाथ उठाकर दौड़ा, अब पिट के मार दूंगा। अब बलराम को तो गुस्सा आ ही चुका था, बलराम तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो तो साक्षात कौन है, अनंत शेष है, उनका क्या ड्यूटी है, अरे संपूर्ण धरती, केवल एक धरती नहीं, एक धरती नहीं, अनंत कोटि धरती ऐसे ब्रह्मांड उनको टिकाते हो, धारण किए हैं अपने सर के ऊपर, और उनको लगता है कैसा, बहुत हैवी लोड लगता है ना, बहुत हैवी ड्यूटी है। हाँ, सरसों की दाना आपके ऊपर कोई धर दे, आपको ज्यादा भारी पड़ेगा, हमको भारी नहीं पड़ेगा, उनको किसे भारी पड़ेगा, केयरलेस। ये साक्षात आनंद शेष है, वो जब क्रोध में आ जाए, वो जब रोष कर ले, तो उनका सामने तो महाकाल भी क्षण भर टिक नहीं सकता, ये कूट आता है गुस्सा करके, वो तो जैसे कोई बैठे हैं मच्छर आके तंग करता, इसे हटा दे, इसे बाएं हाथ उपेक्षा में, अब हलना से बाएं हाथ इसे कर दिए, वो हाथ उनके सर में पड़ा, हाथ उनके सर में लगा तो उनका सर तो खिल्ली खिल्ली निकल गया, बिखर गया, सारे सारे निकल कर खंड खंड होकर निकल गया, खत्म। वो तो बेचारा कोई साउंड भी नहीं कर पाया, कोई तड़प कुछ नहीं, धट कर वहीं बैठा, सारे रक्त बह गए, खत्म। बाप रे बाप, सारे कंस के समेत सारे समाज देख रहा था, ये तो बिल्कुल जैसे कोई कच्चे घड़ा होता ना, घड़ा देखा ना, पका नहीं, कच्चे मिट्टी का घड़ा, उसके ऊपर दो हाथी में एक बड़ा गदा से लेकर कोई प्रहार कर दे, कैसा जैसे ठीक ऐसे ही लगा, ये हाथ ऐसे उपेक्षा में हाथ हिला दिया, कच्चे घड़ा की तरह ये विशाल कूट का सर बिल्कुल ऐसे खिल्ली उड़ गया, उसका बिखर गया। रे बाप रे बाप, बाकी जितने सकड़ो मल्लशाला में मल्ल थे, अपने अपने ड्रेस को उतार चुके थे उन्होंने पहले से, बोले हमारा नंबर तो है भाई, हम नहीं जाने वाले हैं। वो लेकिन वो क्या करते थे, कंस की ओर देखते थे, बाकी पुलिस की ओर देखते थे, देखते थे दरवाजा कौन सा खुला है, सब दरवाजा बंद है, बोलते ये जंक लगा दरवाजा है, ये ताला जो है ना कमजोर है, इसी तरफ नजर लगाओ, दो चार को भेज भी दिए थे, बोले जाकर तोड़ो, वो काट पिंड तोड़ने में लगे हुए थे बेचारे, हमारा नंबर आने से पहले भागे। तो जब कूट गया चाणुमुष्ट गए जो उनका जो साहसिक मल्ल ओदोन थे जिनका नाम था सल और तुसल, वो दो भाई थे, दोनों भाई दौड़े। अब बलराम के पास नहीं गए, बोले नहीं ये बड़ा खतरनाक दिखता, उनके पास नहीं जाएंगे, दोनों उनके पास जाएंगे। छोटे के पास आए, बड़े के पास नहीं, उनका रूप देखने से भयानक दिखता था। छोटे के पास आए, सल आया कूद करके आया तो कम से थोड़ा देखा शायद कुछ और आशा है, कुछ होगा। तो बाजा थोड़ा डाउन कम हो जाता, एक एक मर्डर होते थे, बाजा भी स्लो हो जाता, नहीं बजाओ, वो दौड़ते हैं। अब गए, सल दौड़ कर गया और दौड़ कर जाने से पहले उनको पकड़ लिया कृष्ण ने। अब खेल खत्म, अब सब विकेट गिरने लगा फटाफट। पहले थोड़ा पिच खेल किए, उसके बाद ऑल आउट होने में टाइम नहीं लगा, फटाफट विकेट गिरते गया। आते ही जैसे पिच में उतरा सल, पकड़ लिया उनको, पकड़ करके दे ऊपर घुमाए, 100 चक्कर घुमाए उसको, घूमते घूमते बेचारा मर गया वो। और जैसे धोबी कोई कपड़ा जब पीट के सफाई करता ना, ऊपर उठाकर ऐसे पीटता है, उठाकर दुम पीट दिया उन, तो उनका भी सारा हो गया, वही भी सब फट फट गया, मर गया खत्म, सारे ब्लड निकला। अब तो सारे रक्त ही रक्त हो चुका था, इतने मुलायम मिट्टी था, अभी सारे ब्लड ही ब्लड हो चुका था। जैसे वो मरा तो तुसल निकल पड़ा था, वो भी राम के पास, कृष्ण के पास आया तो उनको टाइम नहीं मिला हाथ पकड़ने के लिए, उसका पैर को पकड़ कर खींच लिया, पैर पकड़ कर खींच करके एक पैर को नीचे दबाए, पैर के ऊपर रखे और दूसरे पैर को उठाए, ऐसे सीधा ऐसे फाड़ते हैं ना, क्या फाड़ते हैं बिल्कुल ना, कभी फाड़ते ना बिल्कुल 50-50% हो जाए, कभी 60-50 भी नहीं, 60-40 भी ना हो, बिल्कुल समान समान हो जाए। दोनों टांग को उठा करके सारा कर दिए नीचे से, मस्तक तो दो खंड कर दो टुकड़ा, बस वो बेचारा भी आहा उहू चूचा कुछ कर नहीं पाया, टाइम नहीं मिला कुछ आहा करने के लिए, मरने से पहले होता ना ओहो आहा, वो भी नहीं कर पाया बेचारा, टाइम नहीं मिला उसको, इतनी जल्दी से फाड़ दिए। इसे विकट दृश्य देखते थे सारे समाज, बाप रे बाप, अकल्पनीय स्थिति, जो किसी का जनमानस में कभी सोच भी नहीं सकते थे, हठात सीन बदल गया। ये छोटे छोटे कुसुम सुकुमार बालक ये महावज्रकाय मल्ल को ऐसे डिफीट करते गए, आउट करते गए, मारते गए, लोगों तो बस देखते ही रहे, देखते रहे। कंस बिचारा का पसीना उतरते उतरते उनका चक्कर आ गया, वो पसीना भी नहीं उतर रहा उसका। जैसे सल तो सल मर गए, अब खूब जोर से साउंड, धड़ाम करे साउंड हुआ, सब खड़े हो गए चौंके, क्या वो दरवाजा टूटा। एक बाउंड्री वाल का दरवाजा तोड़ गया, हाँ दरवाजा कैसे टूटा, भड़ाम भड़ाम कूदे सब, जितने 100 मल्ल और थे ये कूदे, पीछे नहीं देखे, बैक गियर में भागे मथुरा की ओर, देखे ही नहीं वो लोग, और शायद मथुरा छोड़ के चले गए, जीवन में वो कभी मल्ल क्रीड़ा किए भी नहीं, प्रणाम कर दिए भाई और मरेंगे नहीं। वो मन में सोच रहे थे पता नहीं ये तो भगवान हरि ही लगता है, हम सुने हैं भगवान हरि ये धरा के भार उतार निकले आए हैं, वो लगता है हम जैसे मोटे मोटे मल्ल सब बड़े तागड़े हैं ना, हमसे भार है, सारे मल्ल को मार देंगे, लगता है आज भार उतार देंगे, हमारा भी सब डेढ़ क्विंटल 2.5 क्विंटल वेट हमारा है, ये सब हमको ही मार देंगे आज, लगता है भागो भाई। सब धड़ाम धड़ाम कूद करके गेट तोड़ करके भागे, दे दौड़े मथुरा डिस्ट्रिक्ट छोड़कर भाग के, कोई नहीं आया। अब क्या करें, अब बेचारा कंस खड़ा हो गया। अब ये दोनों कृष्ण और राम और श्याम इन पांचों को मार करके, अब बाजा बज रहा था, अब जैसे उनका कुश्ती पूरा नहीं हुआ है, इसी मुद्रा में इसी आंग में भेजो और कुछ को भेजना है, बाकी सब भाग गए, और कोई है आने दो, ऐसे खड़े रहे इसी मुद्रा में। अब सारे उपस्थित जनता सभी के मन में चिंतन में एक उद्घोष निकला, कोई रोक नहीं सका, किसको रोका भी नहीं जा सकता, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हो, कंस के पार्टी के हो, विपक्ष के हो, सब एक साथ में बोले ये जो भीषण सीन चल रहा है सामने भाई, सबका मूड अप, सोचना भी अप, एक साथ में सब चित्कार को ले, भगवान वासुदेव की जय हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण जन जन के कंठ से निकलने लगा भगवान वासुदेव की जय हो, जय हो, जय हो, वासुदेव नंदन की जय हो। इसी जयकार को सुन करके कंस और सहन नहीं कर पा, प्रणाम से खड़ा हो गया। विशाल शरीर था उनका, महाराजाधिराज, गुस्सा तो था ही, अब उनको सहन नहीं हुआ, आंख उनका पूरा रक्त चक्की हो चुका था, इतने गुस्सा में आ चुका था, खूब जोर से ऑर्डर किया, बंद करो बाजा। अब बाजा बजा रहे, बंद करो बाजा, वाले को होश उड़ गया, इतनी आवाज किया उन्होंने, चित्कार, धड़ाम से बंद कर दिए। लेकिन अब तो यहां नहीं बाजा बज रहा था, अब तो गंधर्व किन्नर देवता अपने बजा बजाना शुरू कर दिए थे। हाँ, वो तो कंस के अंडर में नहीं, वो क्या करे, उनको थोड़े, वो तो बाजा बजाने लगे, उनका तो बहुत बढ़िया बाजा बजने लगा। कंस अब क्या करेगा, देख रहा है कि कुछ बोल नहीं पा रहा है, थर 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 कांप रहा है गुस्सा में। इधर आखड़ा स्थली में 75 भाग तो रक्त में किच हो चुका है, बाकी किनारे बचा है। श्याम सुंदर का मन नहीं भरा है कुश्ती लड़ करके, एक बार कुश्ती में उतरा, अभी मन नहीं भरा, तब किनारे में बैठा था तोक, खींचा उसको, आओ तेरे से साथ लड़ना है। भद्र बोला, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? अरे तू इतनी देर से लड़ रहा, थक गया होगा, थोड़ा तो दम, थोड़ा रेस्ट करो, तू विश्राम चाहिए होगा, अभी तेरे से नहीं लड़ूंगा। नहीं, खींचता हूं तुझे, पटकूंगा। जैसे खींच कर लिया, भद्र आकर के अपना हल्का पीछे कर लिया। 5 साल का 5.5 साल का लड़का, अपने लकुट साइड में रख दिया, कसनी मार दिया, फेट कस दिया। बोला, तू क्या, एक असुर को मार दिया तो भारी बीरी समझ रहा है अपने, अभी ऐसे पटकूंगा तुझे, देखना अभी। हाँ, एक असुर को मार लिया, होता क्या, और असुर लोग का बल होता है, थर्माकोल बड़ी है उनके, उसको फाड़ दिया, उनको मार करके अब वीर समझ रहा है, ऐसे पटकूंगा। तो वरुण थर ने उठा है, भाई उनके साथ मत लड़ो, देखो कितनी देर से ताकत करा, देखो मुझे खींच रहा है, मैं तो मना कर रहा हूँ लड़ने के लिए, अगर लड़ना चाहते श्री राम को जाओ लड़ने के लिए। श्याम सुंदर, नहीं नहीं नहीं, श्री राम के साथ तो मैं नहीं लड़ूंगा, वो तो मुझे पटका देगा, मुझे डर लगा, वो तो मुझे गिरा देगा। लेकिन क्या करें, देवताओं के वाद्य के ताल पर आकर के वो भी उतर गए। अब उतर गए, एक से एक जोड़ी बन गए। अब तो जो जनता को अभी असली मल्ल युद्ध देखने मिला, सब 5 साल 6 साल की एक एक जोड़ी, एक एक आपने फेट कस करके उतर गए। हम हूं हाँ कर रहे थे, एक किसी को पटक रहे थे, खींच रहे थे, ठोक रहे थे, वो जो कुश्ती हुआ देख रहे थे, देववादियों के साथ उनका जो मतलब जो था चलने लगा। लेकिन और सारे तालियां बज रही थी, उनके नाम न लेकर के उनको उसका रहे थे, पुकार रहे थे। इसको देखकर कंस का तो बिल्कुल छाती फटने का सहन नहीं हुआ, खूब जोर से चित कर, फिर बाजा बजता, बंद करो वाद्य। यद्यपि उनके वाद्य बहुत पहले से बंद हो चुका था, उनके जो बैंड पार्टी थे वो तो बहुत पहले से बेचारे बंद कर दिए थे, लेकिन वो देवताओं के बाजा था। लेकिन देवता लोग भी कंस को बहुत डरते थे, अमर विजय था, देवराज्य विजय करके आया था, उन्होंने देवता को बहुत डर था, सामने नहीं आ रहे थे, पीछे इतने जोर से चिल्लाया, उनको लगा पता नहीं हमारा उसका एक्शन लेगा शायद, वो भी बंद कर दिए बेचारे, देवता लोग भी बजा बजाना बंद कर दिए। जैसे बंद कर दिए तब चिल्लाना शुरू किया, यही शोर से चिल्लाया, इन बालकों को निकाल दो, जल्दी गेट खोल कर निकाल दो, दुष्ट बालक निकाल दो, मेरे सारे मल्ल को मार दिए, निकाल दो। अरे निकाल दो, गेट बंद तो तू नहीं किया, इसी को बाहर नहीं जाने दो, अब बोल दो निकाल दो अब उनको रहने दो, जल्दी निकालो उनको, निकालो उनको। खूब जोर से चिल्ला रहा था, जितने जल्दी उसको निकाल दो, दुष्ट बालक निकाल दो उनको, ये दुर्बुद्धि नंद को मार दो, उनको सारे संपत्ति हड़प लो, वसुदेव को मार लो, उग्रसेन को मार लो, उनको मार लो, उनके संपत्ति। वो चिल्लाते जा रहा था लेकिन ये नहीं देख रहा था उनके आदेश का कार्रवाई पालन करने वाला को है या नहीं। बेचारे जितने सेना सेनापति के साथ तो काल शाम को स्वाहा हो चुके थे, रंग भवन में धनुर्भवन में सारे कावार हो चुका था, आउट हो चुके थे। बचे कुचे जो थे मल्ल थे बड़े बड़े कुबलिया पीढ़ी, बाकी कुछ हो तो गेट के बाहर गए, बाकी जो बड़े बड़े शक्तिशाली मल्ल थे उनमें से जो मुख्य महामल्ल पंच थे उनका ट्रेनर को लेकर के कंस सामने देख रहा है, उनका डेड बॉडी, पांचों का डेड बॉडी छह टुकड़ा होकर गिरा हुआ है, मरे पांच लेकिन छह टुकड़ा पड़ा हुआ है सामने, सभी का सामने पड़ा हुआ है। अब बाकी जो मल्ल थे तो दरवाजा तोड़ के भाग गए, कहां गए पता ही नहीं उनका फिरार, और बाकी बचे कौन उनके साथ में, जो थोड़े बहुत पुलिस और सिक्योरिटी प्रहरी सिपाही थे वो बेचारे सोच रहे थे, भाई क्या सोचे, बोले भाई हमारे सर के ऊपर कोई पराये, हमारे धड़ के ऊपर कोई पराये सर तो नहीं है जिनको हमने कच्चा घड़ा की तरह फोड़ दें जाकर के बोले कि जो हो गया हो गया, अब तो आउट हो चुके हैं सारे, महाराज कंस का भी काल पूर चुका है, मुझे लगता है हमको अभी तो सरकार बदल गया, अब जैसे कोई इलेक्शन होता ना जब सरकार बदलता है तो सारे डिपार्टमेंट जो सारे सब जैसे उनकी तरफ से उनकी तरफ हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सारे सिक्योरिटी, अब जो उनका हैंडपंप डालकर खड़े थे ना उग्रसेन के दो साइड में दो सिक्योरिटी खड़े थे वसुदेव के सामने, वो सब प्रणाम कर रहे, सर नमस्कार सर कुछ काम करे सर, बिल्कुल वहां बदल चुका है परिस्थिति, बदल गया, देखे कि और सरकार बदल रहा है क्या करें, तो उनका ऑर्डर कोई पालन करने वाले नहीं। अभी बेचारा इतने जोर से चिल्लाता जा रहा लेकिन कोई सुनता नहीं उसका, अरे मंत्री अमात्य सेनापति थे वो भी नहीं उठ रहे हैं, बोले कौन मरेगा जाकर, इतने पर्वतकार पर्वतकाय वहां वज्र जैसे मल्ल को ऐसे ही मार दिया, देखते देखते भाई हम कौन है उनके सामने, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं काम करता, कोलिया पीढ़ी जैसे हाथी जिसको नाम सुनने से छाती कांप रहा था उसको ऐसे मार के आया, बाप रे बाप, ये तो लगता है कि साक्षात मृत्यु है, सबको मार डालेगा आज, कोई नहीं जाओ भाई, सरेंडर एक ही भाई, एक ही काम है, ओनली सरेंडर टू हिम। कोई नहीं उठ रहे थे, उठ नहीं रहे थे, लेकिन कंस को फुर्सत नहीं देखे कि उनका ऑर्डर कोई पालन कर रहा है कि नहीं, वो तो चिल्ला कर आवाज है, ये करो वो करो बांधो मारो, तो उनकी आवाज सुन करके उनका देवताओं के बाजा बंद हो गया और उनके जो बच्चे लड़ रहे थे वो भी बंद हो गए, एक दूसरे को छोड़कर देखने लगे, इतने कौन चिल्ला रहे भाई, बहुत ऊंचे आसन से बैठकर मंच ऊपर चिल्ला रहा था, उनके ओर देखे देख करके सबके मुंह तमक गया, लाल हो गया, दुष्ट बदमाश हमारे बाबा को मारने के लिए गाली दे रहा है, बाबा को मारने के लिए बोल रहा है, अब अपने लाठी को कसकर फेंकने चाहते थे सब, लेकिन इतने ऊंचे में है कि वो फेंकने से पांच साल का लड़का कितने दूर फेंक पाएगा बेचारा, लाठी उठा रहे बोलते वो बहुत दूर है जाएगा नहीं हमारे लाठी उतना, तो क्या करें, इधर उधर घूर रहे हैं, घूर रहे हैं, कैसे उनको एक्शन ले बेचारा, क्या करेंगे, चढ़ेंगे कैसे, इतना बहुत ऊंचा में पड़ा है लेकिन इतना ज्यादा वो बक जा रहा था, भगवान राम और सहन नहीं कर पाए, गुस्से में आ गए, वो दांत उनका बद्ध हो गया, अनुज की ओर देखने लगे, क्योंकि वो तो अग्रज ऐसे हैं, अनुज की सुकृति ही सब कुछ है, अनुज की ओर देखने लगे, लेकिन देखने तक हुए थोड़ी अनुज इधर, श्याम सुंदर तब तक तो दौड़ चुके थे, दौड़ करके अनुज कहाँ गया देखो, दौड़ करके जा करके उछल चुके थे, इतना हाइट में कंस अपना आसन बनाकर बैठा था, स्टेज बांधा था कम से कम 50 फीट ऊपर में, भगवान ने जाकर एक जंप कूदा मारे जाकर के ऊपर पहुंच गए, इतने जोर से धक्का मारे जो डेकोरेशन सब टूट गया, सारे लाइट फाइट जो पर्दा फर्दा लगे सब टूट फूट गया, अब कंस तो अब बुलारी आ गया, मेरा काल आ गया, तुरंत ढाल और तलवार लेकर खुद पड़ा अपने आसन से और पैंतरा लेने लगा, मारूंगा उसको मारूंगा, लेकिन इतने अवकाश ही कहां मिला बेचारा को, पोजिशन बहुत लिया लेकिन पोजीशन लेकर के एक मार मारे इतने अवकाशी कहाँ मिला। ये जो चंचल शिरोमणि है इतने फुर्ती से जाकर बाएं हाथ में उसके सर के ऊपर मुकुट को उठा करके फेंक दिए। वो जाकर के वो रक्त के पास पड़ा, जो डेढ़ बड़ी से पड़े थे पांच छह टुकड़ा, वहां जाकर मुकुट गिर कर पड़ा, मुकुट फेंक दिए। वो मुकुट देख रहा था चला गया। आज मथुरा नरेश के मुकुट जाकर के डेढ़ बड़ी के पास पड़ा हुआ है, झन करके गिरा। और बेचारा इधर देखते देखते दाहिने हाथ में उसके बाल को पकड़ लिए। बोले मूर्ख, मेरे मां के केस को तो खींचा था, ऐसे खींच करके एक झिंक मारे, एक चौंक दिए कि बेचारा वहीं से गिरा जा करके वही नीचे मंच से 50 फुट हाइट से नीचे जाके धड़ाम गिरा। वो गिरते गिरते मर ही चुका था बेचारा। लेकिन भगवान के क्रोध, वो वहीं से कूदे उसके ऊपर, सीधा सीधे उसके शरीर के ऊपर कूदे, कूद करके खूब मुक्का मारे उनको। इतने रोष में थे, पता नहीं कितने दिनों के क्रोध स्टक था उनके पास, सारे स्टक आज निकलना था। उनके सारे भाइयों को तुमने मारा, पिताजी को जेल में दो दो बार डाला, माताजी को कितने यंत्रणा दिया, कितने भद्रों कितने साधु संत को परेशान किया, सारे क्रोध स्टक बनकर पड़ा था भगवान का। सारे क्रोध आज बोले मर गया, भले डेढ़ बड़ी के ऊपर निकाल रहे, मार करके उनके केस को पकड़ कर दे खींचते गए सबके सामने। ओह क्या कुत्सित भयानक दृश्य है, पूरे मथुरा प्रदेश की प्रत्येक जनता के सामने, पूरे सामूहिक जनता के सामने उनके ही मथुरा नरेश महाशक्तिशाली महाजाल राजाधिराज असुर नायक कंस का सब आज उन्हीं के सामने रक्त और पंख के साथ घिसटा जा रहा है। उनके बाल पकड़ घिसते रहे, हाय हाय लोग सब करने लगे, हाहाकार करने लगे। खैर राजा का शरीर है, मर गया, अब क्या इसको दुर्गति कर रहे हैं। खैर राजा था, क्या करे, लेकिन भगवान का रोष नहीं मानता, खूब घिसे इधर उधर। कोई भगवान के सामने जाए उसको रोके, कोई मुंह नहीं देख सकता, इतने क्रोध विकार आ चुका था भगवान में। खूब इधर उधर उसने जाता ना, क्या उसे शरीर को, शरीर तो मर चुका था, क्या होगा। एक सखा उठ करके बोला, अरे कन्नू क्या करे, छोड़ दो उसको, डेढ़ बड़ी पकड़ कर घूम रहा, छोड़, सारे रक्त फक्त हो गया तेरे शरीर में, क्या सुन। भगवान के शरीर में जहां तहां रक्त लगा हुआ है, धूल लगा हुआ है, किसी कीचड़, उसे पकड़ के खींच रहा। सखा कहने पर छोड़ दिए, कोई कुछ, सब पूरा साइलेंट, अब कौन कहे। कुछ समय साइलेंट के बाद कंस के सगे भाई 8 बैठे थे उनके सीट के नीचे, उनको बड़े क्रोध आया, आपने अस्त्र लेकर कूद पड़े, 8 को 8 और उनके पीछे जो मंत्री सेनापति अमात्य थे वो भी सब कूद पड़े। बोले चलो एक साथ हम सब जंग मारेंगे। जैसे कूद पड़े अपने सीट से अस्त्र शस्त्र लेकर के कृष्ण की ओर दौड़े, बलराम देखे बोले अरे मेरे अनुज तो डेढ़ बड़े खींच रहा है, वो दौड़ रहे उनको मारने के लिए, ये जो गजदंत लेकर आए थे रखा हुआ किस काम के, उसको उपयोग करें, उठा लिए उसको। अब सख्यात अनंत ने गजदंत उठा लिए, अब तो कहां, कोई जंगल में कोई मृगराज सिंह जब कोई पशु छोटे छोटे निरीह पशुओं के बीच में कूद पड़ता है, भले सैकड़ों पशु हों उनके ऊपर कूद पड़े, क्षण भर भी नहीं लगता पशुओं के लाश गिरने में, उससे भी कुछ कम समय लगा। बलराम के हाथ में दंताघात जो गजदंत के बाहर पड़ा, कोई चित्कार करने के लिए टाइम नहीं मिला, वहीं के वहीं भग्न शीर भग्न हस्त होकर के बस मंस के लुथड़ा बीच गया। देखते देखते जितने दौड़े थे सभी का क्षण भर में समाप्त तो हो गए सर। अब तो और थोड़ी देर रुक करके अभी बिल्कुल सीन बदलने लगा। अब क्या हुआ, अब बिल्कुल नीरवता। उसके बीच में राजमंच के पीछे से जो राजकीय मंच था उनके परिवार के लोग, कंस की माँ, कंस की दो रानी और उनके भाइयों की सबके पत्नी सब रोते रोते उतरे आ करके सभी के भरी दृष्टि सामने। वो जहां डेढ़ बड़ी पड़ा था, आपने अपने पतियों को पकड़ करके सर पिट पिट करके बख्खे में रोने लगे, नोच नोच करके अपने अलंकार नोच कर फेंक रहे थे, ये कर रहे थे, बड़े आकुल प्रार्थना कर रहे थे। समय हो चुका है आपका, अब उसका वर्णन फिर कभी करेंगे, है ना नहीं? हरे कृष्ण। क्या हो, और वेट करते हैं हम? आप लोग को सुनकर थोड़ा खुशी होना चाहिए। आप लोग जागर उपवास करते ना शिवरात्रि के दिन, करते ना सब? नहीं करते हैं? करते हैं। तो उस दिन केवल भगवान शिव के उपवास नहीं करते हैं, उस दिन डिसअपीयरेंस डे ऑफ कंस भी था। हाँ, कंस का तिरुभाव तिथि था। हाँ, शिवरात्रि के दिन। केवल उनका नहीं था, सब परिवार, उनके सारे भाइयों का भी। राज परिवार का। जी, शिवरात्रि नहीं, जो मेन शिवरात्रि वही है चतुर्दशी के दिन। शिव चतुर्दशी आता ना, चतुर्दशी के दिन शाम को। हाँ, एक तो आता, फिर दो कैसे आता? अभी अभी गया ना जो फागुन में, वही महाशिवरात्रि, वही में फागुन में था। हाँ, क्या अब हमारा अधिकारी लोग मना कर रहे हैं, फिर कभी चांस मिलेगा तो करेंगे। ये पूरा ही नहीं होगा, पूरा कैसे हो जाएगा भाई? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, रंगसभा मिटेगा तब उनका डेड बॉडी संस्कार होगा, उसके बाद क्या होगा, जो ब्रज से लड़के आए वापस आएंगे, ये खत्म थोड़ी होगा। फिर 8 दिन चले तब भी खत्म ना हो। तो आपको मुझे बोले थे कंस को मर्डर कर दो, मर्डर कर दिया। अब उनके जो फिस्ट करना है अब खा कर जाओ। हाँ,
क्रिया भोजन,
हाँ क्रिया भोजन करेंगे। वो तो फिर छुड़ाना तो बहुत बाद में आते हैं। यस, आई एम डन।
हरे कृष्णा। मैं भी बहुत खुश हूँ, कोई पूरे उत्साह में। तो जैसे समय को बीतना था और सातवें दिन को आना था और शन को आना था, जब भागवत कथा को विराम देना पड़ता, देना कोई ऑप्शन नहीं थी, महाराज को देना पड़ा। तो इसके साथ जो है श्रीमद् भागवतम सप्ताह जो है अब बिल्कुल विराम में आ चुका है, खत्म।